आज हम बात कर रहे हैं हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के छठवें संकल्प के बारे में। अच्छा, तो ये सत्संकल्प पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के युग निर्माण आंदोलन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और यह हमें सिखाता है, आप जानते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक बेहतर समाज बनाने के लिए मर्यादाओं और अपने नागरिक कर्तव्यों को मानना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहली बात समझते हैं, हमारी शक्ति को नियंत्रण चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि की एक जबरदस्त शक्ति दी है, पर सोचिए जैसे ट्रेन को पटरी पर रहना जरूरी है या बिजली को तार के अंदर, है ना? ठीक वैसे ही हमारी इस शक्ति को भी धर्म और कर्तव्य की मर्यादा में रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही शक्ति विनाशकारी बन जाती है और फिर जानते क्या होता है, हमारा अपना मन ही हमें कोसता है और अंदर अशांति भर जाती है। दूसरी बात जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, अपने नागरिक कर्तव्यों को समझना। इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरों की सुविधा के लिए हम अपनी सुविधा को थोड़ा सा कम कर लें, जैसे पब्लिक प्लेस पर गंदगी ना फैलाएं या इतनी जोर से म्यूजिक ना बजाएं कि पड़ोसियों को दिक्कत हो। अरे, ट्रेन में अगर कोई खड़ा है तो उसके लिए थोड़ी जगह बना देना। बस यही छोटी छोटी बातें ही तो हमें एक अच्छा नागरिक बनाती हैं। और आखिर में तीसरी और सबसे जरूरी बात जो समाज की नींव है वो है ईमानदारी और अपने वादे को निभाना। अपना हर वादा टाइम पर पूरा करें, चाहे किसी को कुछ देना हो या कहीं पहुंचना हो। अगर आप बिजनेस में हैं तो सच्चाई और ईमानदारी बरतें। पूज्य गुरुदेव का कहना था कि ईमानदारी, आप यकीन मानिए, कभी घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि यह आपका सम्मान और आपकी विश्वसनीयता दोनों को बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि मर्यादाओं में रहना, अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को निभाना और ईमानदारी से जीना, यही वो रास्ता है जिससे हम खुद भी शांति से रह सकते हैं और एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं।
कभी कभी लगता है ना कि हमारे आसपास सार्वजनिक जगहों पर एक अजीब सी बेचैनी है। लोग जल्दी में हैं, एक दूसरे की सुविधा का कोई ध्यान ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम पूज्य गुरुदेव के हमारा युग निर्माण सत्संकल्प की गहराई में उतरेंगे और खास तौर पर इसके छठे संकल्प पर ध्यान देंगे। ये संकल्प कहता है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। एक लाइन में बहुत कुछ है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि हम इंसानों को, मतलब इतने बुद्धिमान प्राणी को, इन मर्यादाओं की जरूरत ही क्यों है?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और सत्संकल्प इसकी शुरुआत एक बहुत ही दमदार मिसाल से करता है। सोचिए एक शक्तिशाली रेलगाड़ी का इंजन, अगर वो पटरी पर ना चले तो उसकी ताकत किसी काम की नहीं, बल्कि विनाशकारी है।
अच्छा।
या फिर बिजली अगर तारों के दायरे में ना रहे तो वो रोशनी देने की जगह सब कुछ जला सकती है। सत्संकल्प यही कहता है कि मनुष्यों को मिली बुद्धि और शक्ति भी ठीक इसी तरह है, अगर इन्हें कर्तव्यों और धर्म की पटरी पर न रखा जाए तो यही शक्ति भस्मासुर बन जाती है।
वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब नियम और मर्यादाएं हमें कैद करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी शक्ति को सही दिशा देने के लिए हैं।
बिल्कुल,
वो पिंजरा नहीं बल्कि एक चैनल है।
तो सत्संकल्प में जिन्हें असुर या दानव कहा गया है वे असल में इसी अनियंत्रित दिशाहीन शक्ति के प्रतीक हैं। पर यहाँ एक सवाल और उठता है, ये नियंत्रण कहाँ से आए? क्या ये सिर्फ बाहरी दबाव है, मतलब समाज या कानून का डर?
नहीं।
और यही इस संकल्प की सबसे गहरी बात है। सत्संकल्प बाहरी दबाव से ज्यादा भीतरी आवाज पर जोर देता है। वो हर इंसान की अंतरात्मा की बात करता है जो हमारे अंदर एक मार्गदर्शक की तरह बैठी है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमें शांति और संतोष का एहसास कराती है, और जब हम कुछ गलत करते हैं तो वही अंतरात्मा हमें लज्जा, भय और ग्लानि से भर देती है। सत्संकल्प में इस भीतरी चुभन को आत्म प्रताड़ना कहा गया है और इसे सबसे बड़ी मानसिक बीमारी बताया गया है।
अच्छा, तो मैं समझा। तो वो जो किसी से झूठ बोलने या किसी का हक मारने के बाद एक बेचैनी होती है,
हाँ,
वो असल में आत्म प्रताड़ना है।
हाँ।
और सत्संकल्प कहता है कि ये उस छोटे से फायदे से मिले सुख को भी खत्म कर देती है। ये तो बड़ी दार्शनिक बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि सत्संकल्प इसे रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़ता है ना?
बिल्कुल।
और यहीं से नागरिक कर्तव्यों का विचार आता है। सत्संकल्प इस ऊंची फिलॉसफी को एकदम सड़क पर ले आता है।
हाँ।
इसमें बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं।
हाँ।
जैसे सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता बनाए रखना।
हाँ, ये तो बहुत आम बात है। आम है पर जरूरी है। केले या मूंगफली के छिलके कूड़ेदान में ही डालना, रेल के डिब्बे में इतना शोर न करना कि दूसरों को असुविधा हो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका सार एक ही है, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी थोड़ी सी सुविधा और आज़ादी को खुशी खुशी सीमित करना।
सही कहा। सच्ची आज़ादी ये नहीं कि हम जो चाहें करें, बल्कि ये समझना कि समाज की भलाई के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, बल्कि वचन का पालन और ईमानदारी भी शामिल है।
हाँ बिल्कुल।
सत्संकल्प में दर्जी या मोची का उदाहरण है जो समय पर काम पूरा नहीं करता, या उस व्यापारी का जो नकली माल बेचता है। ये सिर्फ एक ग्राहक के साथ धोखा नहीं है, ये तो पूरे समाज के आपसी विश्वास की नींव को कमजोर करता है।
सही कहा आपने। और सत्संकल्प इस धारणा को भी चुनौती देता है कि ईमानदारी घाटे का सौदा है। वो कहता है कि यह प्रामाणिकता की परीक्षा है। हो सकता है कि बेईमानी से तुरंत कुछ फायदा हो जाए, लेकिन लंबे समय में ईमानदारी ही व्यक्ति और उसके काम दोनों का सम्मान और साख बढ़ाती है। ये एक निवेश की तरह है जो भरोसा बनकर लौटता है।
तो कुल मिलाकर ये छठवां संकल्प व्यक्तिगत अंतरात्मा से शुरू होकर सामाजिक नागरिक कर्तव्य तक का एक सफर है। ये हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। इसका मूल मंत्र यही है कि हम खुद भी शांति से जिए और अपने कामों से दूसरों के जीवन में भी शांति बनाए रखें।
इसे समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। सत्संकल्प हमें याद दिलाता है कि अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बिगाड़ करे तो समाज में बहुत बड़ा बिगाड़ हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सुधार करे तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा नागरिक कर्तव्य है जिसे हम आज से ही पूरी निष्ठा से अपनाकर उस बड़े सुधार में अपना योगदान दे सकते हैं।
द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में आजादी चाहते हैं ना, मतलब कोई रोक टोक ना हो, कोई नियम नहीं, जो मन में आए वो करने की पूरी छूट। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि बिना किसी नियम या लिमिट के असल आजादी कैसी होगी? क्या वो सच में सुख देगी या एक तरह का कियोस, एक अराजकता पैदा कर देगी? आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, और इसके लिए हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लिखे हमारा युग निर्माण सत्संकल्प का सहारा लेंगे। हमारे पास उनका ये सत्संकल्प है और आज हम इसके छठवें संकल्प पर खास तौर पर ध्यान देंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे कुछ सीमाएं या मर्यादाएं असल में हमारे लिए, हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए बेहतर हो सकती हैं। तो छठवां संकल्प कहता है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इंसान जिसे कुदरत ने सबसे ज्यादा समझ और ताकत दी है, आखिर उसे ही इन सीमाओं की जरूरत क्यों पड़ती है?
ये एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल है, और पूज्य गुरुदेव इसका जवाब भी बहुत सीधे तरीके से देते हैं। वो समझाते हैं कि क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धि और शक्ति मिली है, इसीलिए उसके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। इसी जिम्मेदारी को उन्होंने कर्तव्य धर्म कहा है। सोचिए, शक्ति अगर बिना किसी नियंत्रण के हो तो वो बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम ज्यादा करती है, वो विनाशकारी हो जाती है।
ये बात मतलब सुनने में तो सही लगती है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें?
हाँ,
कोई उदाहरण है सत्संकल्प में इसे आसान बनाने के लिए?
हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक ट्रेन का इंजन, उसमें हजारों हॉर्स पावर की ताकत होती है, लेकिन वो ताकत तभी काम की है जब तक इंजन पटरियों पर चल रहा है। अगर वो पटरी से उतर जाए तो वही ताकत भयंकर तबाही मचा सकती है।
बिल्कुल।
एक और उदाहरण है बिजली का। जब तक बिजली तारों के अंदर एक अनुशासन में बह रही है, वो हमारे घर रोशन करती है, पंखे एसी चलाती है, लेकिन अगर वही बिजली तारों से बाहर बिखर जाए तो वो जानलेवा बन जाती है।
अच्छा, मतलब शक्ति और अनुशासन का एक गहरा रिश्ता है। बिना अनुशासन के शक्ति खतरनाक है।
एकदम सही। पूज्य गुरुदेव यही स्पष्ट करते हैं कि हर शक्तिशाली चीज पर नियंत्रण जरूरी है, और इस हिसाब से देखें तो एक अनियंत्रित इंसान इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी साबित हो सकता है। वो कहते हैं कि इतिहास में जिन्हें हम असुर या दानव कहते हैं, वो कोई सीम वाले राक्षस नहीं थे,
वो दिखने में इंसान ही थे, बस फर्क इतना था कि उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल मर्यादाओं को तोड़ने और दूसरों को कष्ट देने में किया। तो एक तरह से असुरता का मतलब ही है मनमानी करना, उच्छृंखलता, किसी नियम कानून को न मानना।
लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या इनोवेशन या कुछ नया करने के लिए नियमों को तोड़ना जरूरी नहीं होता? अक्सर हम सुनते हैं कि महान चीजें वही लोग करते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं।
ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें स्वार्थ के लिए की गई मनमानी और समाज की भलाई के लिए किए गए रचनात्मक बदलाव के बीच का फर्क समझना होगा। सत्संकल्प में जिस उच्छृंखलता या मनमानी की बात हो रही है, वो पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा या अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ता है, तो वो समाज को नुकसान पहुंचाता है। जबकि एक रचनात्मक बदलाव समाज के लिए नए और बेहतर रास्ते खोलता है। तो एक में सिर्फ मैं हूँ और दूसरे में हम हैं, यही मूल अंतर है।
ठीक है, तो ये सारे नियम और मर्यादाएं तो ज्यादातर बाहर से हम पे लगाई जाती हैं, समाज या कानून के जरिए। मैं ये सोच रहा था कि क्या इन्हें मानने के लिए हमारे अंदर से भी कोई आवाज आती है, या हम सिर्फ समाज के डर या सजा के डर से ही सही रास्ते पर चलते हैं?
तो यहीं पर ये संकट बहुत गहरा हो जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने हमें सिर्फ बाहरी नियमों के भरोसे नहीं छोड़ा, उसने हर इंसान के अंदर उसकी अंतरात्मा में एक गाइड, एक मार्गदर्शक बिठाया है। आपने भी महसूस किया होगा, जब हम कोई सही काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो अंदर से एक खुशी, एक सुकून मिलता है।
हाँ, बिल्कुल।
और इसके उलट, जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई मर्यादा तोड़ते हैं, भले ही किसी को पता न चले, तो अंदर से शर्म, डर, अपराध बोध और एक बेचैनी सी महसूस होती है।
हाँ, ये तो होता है, एक भीतरी कश्मकश चलती रहती है। सत्संकल्प में शायद इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो आत्म प्रताड़ना। ये बहुत भारी शब्द लगता है, और ये भी कहा गया है कि ये सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। ये बात आज के समय में बहुत मायने रखती है।
बिल्कुल, आत्म प्रताड़ना का मतलब है खुद को अंदर ही अंदर कोसना, जब आपका जमीर आपको कचोटता है। पूज्य गुरुदेव इसकी तुलना ओले की बारिश से करते हैं। जैसे ओले खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही ये भीतरी ग्लानी हमारे मन और आत्मा की सारी अच्छाई, सारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। जो इंसान खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है, वो फिर कभी अंदर से मजबूत महसूस नहीं कर सकता।
और सत्संकल्प में इस आत्म प्रताड़ना को नशे की लत से भी जोड़ा गया है। ये आज के समाज से जुड़ा एक बहुत गहरा मुद्दा है। क्या इस पर और विस्तार से बात की गई है कि ये भीतरी पीड़ा असल में काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ बड़े अपराधों तक सीमित है या
नहीं? नहीं, यही तो समझने वाली बात है। ये सिर्फ बड़े अपराधियों तक सीमित नहीं है। हर बार जब हम कोई छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, किसी का हक मारते हैं या कोई बेईमानी करते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा पर एक छोटा सा घाव कर देते हैं। धीरे धीरे ये घाव बढ़ते जाते हैं और अंदर एक परमानेंट गिल्ट, एक स्थायी अपराध बोध बन जाता है। इस लगातार की बेचैनी और तनाव से बचने के लिए, उस अंदर की आवाज़ को दबाने के लिए, कुछ लोग नशे जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इससे कुछ देर के लिए सुकून मिल जाएगा, पर असल में वो खुद को और गहरे गड्ढे में धकेल रहे होते हैं।
इसका मतलब ये भी हुआ कि जो व्यक्ति अनैतिक तरीकों से पैसा या सफलता हासिल करता है, वो बाहर से भले ही खुश दिखे, पर अंदर से शायद उतना ही बेचैन रहता है। सत्संकल्प में इस बारे में भी एक बात कही गई है कि ऐसे लोगों का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता।
हाँ, और ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इनसाइट है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जो लोग ऐसे व्यक्ति से फायदा उठाते हैं, वो भी मन ही मन उससे नफरत करते हैं और जानते हैं कि ये भरोसे के लायक नहीं है। वो बस मौके का इंतजार करते हैं कि कब पासा पलटे और वो दुश्मन बन जाए। तो नतीजा ये होता है कि इंसान अपनी आत्मा से तो कट ही जाता है, समाज से भी कट जाता है। जिनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है, उनके लिए देर सवेर में सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए सत्संकल्प में कहा गया है कि ईमानदारी और सदाचार से सादा जीवन जीना बेईमानी की अमीरी से कहीं ज्यादा सुकून भरा है।
ये तो हुई अपने अंदर की बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज की। ये सब व्यक्तिगत और आंतरिक स्तर पर बहुत मायने रखता है, लेकिन इस सोच को असल दुनिया में, अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार में कैसे लाया जाए, मुझे लगता है नागरिक कर्तव्य का विचार यहीं से शुरू होता है।
आपने बिल्कुल सही जोड़ा, नागरिक कर्तव्य इसी आंतरिक समझ का बाहरी रूप है। एक सभ्य नागरिक होने का सबसे पहला मतलब ही यही है कि हम दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अपनी सुविधा और अपनी आज़ादी को खुशी खुशी स्वेच्छा से थोड़ा सीमित करें। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक समझदारी है। समाज हम सब का है। अगर हर कोई सोचे कि मेरे अकेले के करने से क्या फ़र्क पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा बिगाड़ करे तो देखते ही देखते समाज रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा सुधार करे तो समाज का रूप ही बदल सकता है।
चलिए कुछ ठोस उदाहरणों पर बात करते हैं। सत्संकल्प में कुछ बहुत ही आम रोज़मर्रा के उदाहरण दिए गए जो शायद हम रोज़ देखते हैं, जैसे सार्वजनिक जगहों पर सफाई का मामला, कहीं भी थूक देना, पान की पीक थूक देना या केले का छिलका फेंक देना। ये हमारी एक सेकंड की सुविधा के लिए दूसरों को कितनी बड़ी असुविधा देता है।
पैर फिसल सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ये व्यवहार दिखाता है कि व्यक्ति को इंसानियत के शुरुआती कर्तव्यों का भी ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में नहीं। ये एक तरह की सामाजिक शून्यता है।
ट्रेन के डिब्बे वाला उदाहरण भी बहुत सटीक है। कुछ लोग पूरी सीट पर पैर फैलाकर सो जाते हैं, भले ही दूसरे लोग खड़े खड़े सफर कर रहे हों। ये मानसिकता कहाँ से आती है कि सार्वजनिक जगह मेरी निजी संपत्ति है?
ये उसी मैं वाली सोच से आती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये सोच के मेरा आराम सबसे पहले। सत्संकल्प हमें ये याद दिलाता है कि सार्वजनिक स्थान सबका है। वहाँ हमारा अधिकार उतना ही है जितना किसी और का। अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हमें दूसरों की ज़रूरत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान है।
एक और मज़ेदार उदाहरण है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कीर्तन भजन या किसी कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर लगाकर देर रात तक शोर करना, अपनी श्रद्धा या खुशी के नाम पर पड़ोसियों की नींद खराब करना, इस पर सत्संकल्प का नज़रिया बहुत साफ है।
हाँ, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर भक्ति या कोई भी निजी उत्सव बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले हमें अपनी नागरिक मर्यादाओं को समझना चाहिए। अगर आपकी भक्ति किसी बीमार, किसी बच्चे या किसी थके हुए इंसान की नींद में खलल डाल रही है तो वो भक्ति सार्थक कैसे हो सकती है? सच्ची सभ्यता यही है कि हम अपनी इच्छाओं को दूसरों की सुविधा के लिए सीमित करना सीखें। यही समाजनिष्ठ होने का असली मतलब है।
ये बात सिर्फ सामाजिक व्यवहार तक ही नहीं रुकती, हमारे कामकाज, हमारे प्रोफेशनल जीवन पर भी लागू होती है, जैसे समय का पालन करना और अपने वादे को निभाना।
सत्संकल्प में दर्जी और मोची का उदाहरण दिया गया है, जो समय पर कपड़े या जूते तैयार करके नहीं देते। ये मुझे बहुत रिलेटेबल लगा क्योंकि ये आज भी होता है।
हाँ, और यहाँ पूज्य गुरुदेव एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई कारीगर समय पर काम नहीं करता तो वो सिर्फ ग्राहक का समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसके दूसरे जरूरी काम और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचाता है। जो मजदूरी वो ले रहा है उससे कई गुना ज्यादा का नुकसान वो ग्राहक का कर देता है। यही बात किसी कार्यक्रम के समय पर शुरू न होने पर भी लागू होती है। समय की बर्बादी को धन की बर्बादी जितना ही गंभीर माना गया है, क्योंकि गया हुआ धन वापस आ सकता है पर गया हुआ समय नहीं। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि आज की दुनिया में पूरी तरह से ईमानदार रहकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, व्यापार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो चलता ही है। क्या सत्संकल्प इस व्यावहारिक चुनौती पर कोई रोशनी डालता है?
डालता है, और बहुत ही व्यावहारिक तरीके से। सत्संकल्प में व्यापार में ईमानदारी को घाटे का सौदा नहीं बल्कि सबसे बड़ा निवेश बताया गया है। ये आपकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता यानी आपकी साख की परीक्षा है। जब आप मिलावट करते हैं या दाम में हेरफेर करते हैं तो शायद आप एक दो बार ज़्यादा कमा लें, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी ग्राहक का भरोसा खो देते हैं।
और वो एक बार गया तो गया?
बिल्कुल, और एक बार भरोसा टूट गया तो उसे वापस बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके विपरीत जो व्यापारी प्रामाणिक है उसके पास ग्राहक लौट कर आता है। प्रामाणिकता से ग्राहक का समय भी बचता है और उसे संतोष भी मिलता है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी को चुनने जैसा है।
तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो सार यही निकलता है कि छठा सत्संकल्प हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। ये बताता है कि सच्ची आजादी मनमानी करने में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और मर्यादा में है। यह हमें खुद शांति से जीने और दूसरों को भी सुख से जीने देने का रास्ता दिखाता है, चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर सफाई हो, समय का पालन हो या अपने काम में ईमानदारी हो। ये सब सिर्फ अच्छे व्यवहार के नियम नहीं हैं, बल्कि एक स्वस्थ, सुसंस्कृत और मजबूत समाज की नींव है।
बिल्कुल, और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें दूसरों की सुविधा के लिए अपनी इच्छा को खुशी खुशी सीमित करना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में हर व्यक्ति इस सीमा को, इस लिमिटेशन को एक बोझ या त्याग ना समझे,
बल्कि इसे एक सामूहिक आनंद, एक कलेक्टिव जॉय और अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, तो हमारे समाज का स्वरूप कैसा होगा? क्या होगा जब दूसरों का ध्यान रखना हमारा कोई सचेत प्रयास नहीं, बल्कि हमारा सहज स्वभाव, हमारा सेकंड नेचर बन जाए? तब हमारे मोहल्ले, हमारे शहर और हमारा देश रहने के लिए कैसी जगह होगी?